अच्छा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो चार फरिश्तों के बारे में है। जैसे हमने सुना है कि चार बड़े फरिश्ते हैं, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल। इन चार फरिश्तों के बारे में इस्माइली बुज़ुर्गों ने क्या कहा है? क्या ये ऐसे चार फरिश्ते हैं जो आसमान पे रहते हैं और हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है? और एक मोमिन की ज़िंदगी में इन फरिश्तों का कोई रोल है या नहीं है? इसके लिए हम पहले एक सिंपल सी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। कुरान की सूरा 31 की आयत 20 है, जिसमें खुदा फरमाता है कि अलम तरो अन अल्लाह सखर लकु माफिस समावाती व माफिल अर्ज़। क्या तुम नहीं देखते हो कि खुदा ने जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया है। मुसख़र का मतलब है कॉन्कर कर दिया है, तुम्हारे लिए फ़तह कर दिया है, यानी वो तुम्हारा है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है वो खुदा ने सब कुछ तुम्हारे लिए कॉन्कर कर दिया, तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया। व असबगा अलैकुम नेअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया है। इसका मतलब जो आसमान में है वो भी हमारे लिए खुदा ने फतह करके हमारे अंदर रख दिया, जो ज़मीन में है वो सब कुछ भी फतह करके हमारे अंदर रख दिया। तो अगर आसमान की हर चीज़ हमारे अंदर है, हमारे लिए कॉन्कर हो गई है, तो फिर फरिश्ते भी उसके अंदर आ गए। इसका मतलब ये फरिश्ते भी हमारे लिए कॉन्कर हो गए हैं। लेकिन किस तरह कॉन्कर हो सकते हैं, इनको कैसे एक्चुअलाइज़ किया जाएगा, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक की हमको मिल गई, एक कलीद हमको मिल गई कि दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे ज़मीन पे है चाहे आसमान पर है, वो हमारी ज़ात के अंदर है। और इसके लिए मौला मुर्तज़ा अली का एक बहुत ही मशहूर कौल है, अतहसबु अन्नक जिर्मुन सगीर, ए मोमिन तुम समझते हो कि तुम एक छोटा सा जिस्म हो, फीकन तवल आलमुल अकबर, तेरे अंदर तो बड़ा आलम समोया हुआ है। तो इसीलिए इंसान को माइक्रोकॉज़म और दुनिया को मैक्रोकॉज़म कहते हैं, आलम कबीर और आलम सगीर, बड़ी दुनिया छोटी दुनिया। मतलब इंसान को खुद मौला मुर्तज़ा अली ने फरमाया कि तुम अपने आप को एक छोटा सा जिस्म समझते हो, तुम्हारे अंदर तो खुदा ने इस पूरे बड़े आलम को लपेट कर रख दिया है। तो ये बड़ी दुनिया, ये छोटी दुनिया, अब बड़ी दुनिया में जो कुछ है वो इस छोटी दुनिया में स्पिरिचुअल है, लतीफ़ शक्ल में है, सटल फॉर्म में है। इसका मतलब इस दुनिया के अंदर, इस हमारे आलम शख्सी में, पर्सनल वर्ल्ड में पहाड़ भी है, आसमान भी हैं, फरिश्ते भी हैं, खुद खुदा भी है, मौला का नूर भी यही है, ये यहीं से मिलेगा। मौला ने अपने आप को भी हमारे अंदर रख दिया है, तमाम चीज़ें जो कॉन्कर हो गई हैं उसमें वो भी हमारे अंदर इस तरह से मौजूद है। अब क्या करना है, उसको रियलाइज़ करना है, उसको एक्चुअलाइज़ करना है, उसको समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने इस्लाम द रिलीजन ऑफ माई एनसेस्टर और दूसरी जगह पर भी हमें एक तसव्वुर दिया है, डिवाइन स्पार्क, नूरानी चिंगारी, नूर की चिंगारी, डिवाइन स्पार्क। और मौला ने फरमाया है कि हमको दुआ करनी है और कोशिश करनी है कि ये डिवाइन स्पार्क यूनिवर्सल फ्लेम के साथ एक हो जाए। इसका मतलब हमारे अंदर नूर की एक चिंगारी है, और ऐसे इलाकों में जहाँ पर लकड़ी जलाते हैं और आखिर में सिर्फ एक चिंगारी रह जाती है, उस चिंगारी से एक बहुत बड़ी आग पैदा हो जाती है, छोटे से स्पार्क से एक बहुत बड़ी आग। बाज़ औक़ात एक चिंगारी किसी जंगल में गिरती है और जंगल के जंगल को जलाकर राख कर देती है, चिंगारी के अंदर इतनी ताकत है, लेकिन इस नूर की चिंगारी को ज़िंदा रखना है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में जो नूर का चिराग है वो हमने अपने हाथों से जलाया है, और तुम इस नूर के चिराग को जलाए रखना, खबरदार इसकी बत्ती को गिरने न देना वरना ये तुम्हारी जान को जलाएगी। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, इसका खुलासा मैंने बयान किया। तो आप देखें, हमारे अंदर डिवाइन स्पार्क है, हमारे अंदर पूरी कायनात मुसख़र है। जब पूरी कायनात कॉन्कर है तो ये चार फरिश्ते भी हमारे अंदर हैं। क्योंकि इस्माइली मज़हब की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जिस चीज़ को लोग समझते हैं कि आसमान में है, एब्स्ट्रैक्ट है, हम उस तक कभी नहीं पहुँच सकते हैं, मौला ने वो तमाम चीज़ें लपेट कर हमारे अंदर रखी हैं। लोग कहते हैं खुदा का एक अर्श है जिस पर वो बैठा है, वो अर्श हमारे अंदर है, उसकी कोई कुर्सी है हमारे अंदर है, उसका कोई कलम है हमारे अंदर है, उसकी कोई टैबलेट है हमारे अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें जब हमारे अंदर हैं तो फरिश्ते भी हमारे अंदर हैं। अब हम देखेंगे कि ये फरिश्ते हमारे अंदर किस तरह से हैं और इनको हम कैसे समझ सकते हैं। ये फरिश्ते हमारी ताकतें बनकर है। अगर हम ऐसा न सोचें और ये सोचें कि हज़रत जिब्राइल आसमान पर हैं, बेशक आसमान पर हैं, बड़े बड़े फरिश्ते आसमान पर हैं, मगर हज़रत जिब्राइल का एक अक्स, एक कॉपी हमारे अंदर है, मीकाईल का एक अक्स और एक कॉपी हमारे अंदर है, इसराफील और इज़राइल का भी एक अक्स एक कॉपी हमारे अंदर है, और ये हमारे अंदर मुसलसल काम करना चाहते हैं, और अगर हम इनको मौका देंगे तो ये काम करेंगे। अगर हम ऐसा न सोचें तो फिर आप सोचें कि हज़रत जिब्राइल का रसूल सल्लम पर वही लाने के काम के बाद अब क्या काम है। 1400 साल से एक फ़रिश्ता फारिग बैठा हुआ है, एक बुज़ुर्ग फरिश्ता, हालांकि खुदा कुरान में कहता है हमने तुम सबको स्ट्रगल के लिए पैदा किया है, और तमाम चीज़ों में दीन में पैगंबरों ने स्ट्रगल किया है, पैगंबरों ने मजदूरी की है, मेहनत मजदूरी की है, बोझ उठाए हैं, तो ऐसे में एक फरिश्ता 1400 सालों से आसमान पर फारिग बैठा है, बहुत मुश्किल बात है समझना। हज़रत इसराफील का काम क्या है, क़यामत के वक्त खड़े होंगे और सूर फूंकेंगे। क़यामत दुनिया चल रही है, लोग कहते हैं कि आदम से दुनिया चल रही है, हालांकि हमारे पास कुछ ऐसे विटनेसेस हैं जो कहते हैं कि आदम से पहले से दुनिया चल रही है। तो इतने हज़ार सालों से हज़रत इसराफील आसमान पर आराम से बैठे हैं, क़यामत के दिन एक दिन खड़े होंगे, सूर फूंकेंगे, फिर बैठ जाएंगे। इतने बड़े फरिश्ते का बस इतना छोटा सा काम है, वो जितना बड़ा फरिश्ता है उसका इतना बड़ा काम होना चाहिए। और इसी तरह से हज़रत इज़राइल का काम हमारी ज़िंदगी में सिर्फ ज़िंदगी के आखिर में आकर हमारी जान लेना है, इसके अलावा हज़रत इज़राइल का कोई काम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, अगर ये फरिश्ते हमारे अंदर हैं और हमारी क़ुव्वत बनकर हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने, इस्माइली बुज़ुर्गों ने इन फरिश्तों का नाम इंसान की शख्सियत के हवाले से रखा है क़ुव्वत जिब्राइलिया, हमारी जिब्राइली क़ुव्वत, क़ुव्वते मीकाईलिया, हमारी मीकाईली क़ुव्वत, क़ुव्वते इसराफीलिया, हमारी इसराफीली क़ुव्वत, और क़ुव्वते इसराइलिया, हमारी इसराइली क़ुव्वत। और ये जो इन फरिश्तों का कॉन्टेक्स्ट है और इनके काम का है, इसके बाद आपको इसराइल से भी प्यार हो जाएगा, और आप चाहेंगे कि इसराइल हर रोज़ आपके साथ रहे, वो है आपके साथ मगर हमें पता नहीं चलता है, और इसराइल का वो एक डरावना सा जो तसव्वुर है वो ख़त्म हो जाता है और एक बहुत खूबसूरत तसव्वुर जो है वो सामने आता है। तो सबसे पहले हज़रत जिब्राइल, कहते हैं हज़रत जिब्राइल का एक नाम ख्याल है। आप देखिए इंसान के 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, चखना और छूना, ठीक है, इनको शायद मैंने तरतीब से बयान किया नहीं किया, इनको क़ुव्वते बासिरा, क़ुव्वते लामिसा, क़ुव्वते सामिया, क़ुव्वते नातिका, इनके मुख्तलिफ नाम हैं, ये 5 सेंसेस हैं, और ये 5 जो हवास हैं वो हमारे लिए नॉलेज के दरवाज़े हैं। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, हाथ से छूते हैं, तो हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ इल्म होता है, और जिसका कोई एक सेंस भी काम नहीं कर रहा है उसके लिए तालीम का वो हिस्सा थोड़ा सा ब्लॉक रहता है जो आँख वाला अच्छी तरह से देख सकता है, यानी ये गेट्स हैं, इसके ज़रिए से हम ज़ाहिरी दुनिया की तालीम हासिल करते हैं। पीर नासिर खुसरो फरमाते हैं जिस तरह तुम्हारे 5 ज़ाहिरी हवास हैं इसी तरह तुम्हारे 5 बातिनी हवास हैं, और तुम अपने उन 5 बातिनी हवास को भी पहचानने की कोशिश करो, 5 बातिनी सेंसेस को समझने की कोशिश करो। उनमें सबसे पहला सेंस ख्याल है। ख्याल की क्या तारीफ है? आपका जो ख्याल है वो अभी यहाँ बैठे बैठे मेरा ख्याल हुंजा के पहाड़ों तक जा सकता है, मेरे जहन में माउंट एवरेस्ट का तसव्वुर आ सकता है, राकापोशी का तसव्वुर आ सकता है, मेरे जहन में कनाडा में मौजूद कोई फैमिली मेम्बर का तसव्वुर आ सकता है, पाकिस्तान में मेरे अपने बच्चों का तसव्वुर आ सकता है। ख्याल आज़ाद है, आपका जिस्म महदूद है मगर ख्याल लामहदूद है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहें अभी अभी 1 सेकंड के अंदर आप अपने आप को वहाँ मौजूद पा सकते हैं। तो जिस्म जा सकता है? नहीं जा सकता है। हमारे ये 5 सेंसेस हमको वहाँ ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं, ख्याल ले जा सकता है। इसका मतलब हमारे इन 5 सेंसेस से ख्याल की क़ुव्वत ज़्यादा तेज़ है, ख्याल की क़ुव्वत बढ़कर है, तभी तो हम आनन फानन दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। इसीलिए रूहानियत का जो दरवाज़ा है हमारे इस्माइली तरीक़े में उसका नाम है बैतुल ख्याल, ख्याल का घर। इसी ख्याल के घर से तुम आगे जाओगे क्योंकि ये पहला बातिनी सेंस है जो तुमको दूसरे बातिनी हवास से इंट्रोड्यूस करेगा और तुमको आगे से आगे ले जाएगा। जिब्राइल का एक नाम हमारे इस्माइली बुज़ुर्गों ने सैयदना पीर नासिर खुसरो फातिमीद लिटरेचर और हमारे करंट लिटरेचर में भी आपको हज़रत जिब्राइल का नाम मिलेगा, ख्याल, नूर ए ख्याल, ख्याल का नूर। और ख्याल का नूर जो है, कहते हैं कि ये फरिश्ता जो है वो इंसान के ख्याल के आलम को साफ़ करता है, और ख्याल में कोई चीज़ इस तरह से आने लगती है जैसे उसको हम रियल देख रहे हों, चूँकि ख्याल की ताकत है। और कोई कोई इंसान अपने ख्याल की ताकत को बड़ा स्ट्रांग बना सकता है। जैसे मुझे याद है, हम एक एक्सरसाइज करते थे, हम सब आंखें बंद करके बैठते थे और कोई कहता था, तसव्वुर करें, ख्याल करें कि मौला तशरीफ़ ला रहे हैं, पिंडौल सज गया है, दरबार सजा हुआ है, सलवात का विरद शुरू हो गया है। आप तसव्वुर करें कि मौला सीटी बजती थी पहले पाकिस्तान में, आई डोंट नो अमेरिका में तो नहीं बजती होगी, विसल होती थी कि मौला तशरीफ़ ले आए हैं, इसके बाद सब अलर्ट हो जाते थे, सलवात पढ़ते थे। तो ये तसव्वुर करें, अब मौला ने गाड़ी से बाहर कदम रखा, अब मौला पिंडौल में आ रहे हैं, अब उसी तरफ आ रहे हैं जहां आप बैठे हुए हैं, अब मौला के चेहरे का तसव्वुर करें। देखिए, ख्याल की ताकत हमें ये सुझा सकती है। हमारे पांचों सेंसों में से कोई भी सेंस ऐसा नहीं कर सकता है। ख्याल की ताकत, हाँ, ख्याल की ताकत फोर्स करे तो ये सेंस भी शायद उसके साथ मिल के काम करेंगे कि हमें मौला की आवाज़ आ रही है, अब हम मौला की आवाज़ सुन रहे हैं, मौला ने खाना वदान कहा, मौला ने मुस्कुरा कर देखा। अब देखें, इससे एक एक्सरसाइज होती है। सुबह जाकर हम दिन भर जो भी करें, सुबह जाके इबादत करने बैठें, इबादत नहीं हो सकती है। दिन भर उसकी कोई प्रैक्टिस भी होती है। अगर आपको कोई बहुत अच्छा काम करना है, कहीं पे कुछ परफॉर्म करना है, तो आप रिहर्सल तो करते हैं ना। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। दिन भर भी अच्छा सोचना, अच्छा अमल, इससे रात की इबादत ऑटोमेटिक हो सकती है। अगर दिन भर हमारा जो भी दिल चाहे करें और रात को इबादत के लिए बैठें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। दिन भर क्या सोच, दिन भर का काम उसमें एक रोल प्ले करता है। तो ये एक एक्सरसाइज करना भी उसमें एक रोल प्ले कर सकता है। तो ख्याल की ताकत जो है वो जिब्रीली ताकत है। ये जिब्राइल हमारे अंदर है, इसलिए जिब्राइल हर वक्त काम करता है। और ये जिब्राइल जो है, इसको इल्म का फरिश्ता भी कहते हैं। ये इल्म के लिए उभारता है। आपको इल्म का शौक़ आए तो ये उभारता है। लेकिन ये फरिश्ता कब हरकत में आता है? जब हम इबादत करते हैं, जब हम जिक्र करते हैं, जब हम खुद कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फरिश्ता खुद ब खुद, ठीक है, हर इंसान के पास ख्याल की जितनी ताकत है वो हमारे पास भी है, लेकिन मौला के मोमिनीन के लिए उस ख्याल की ताकत में सफाई पैदा होती है, और वो ख्याल में भी चीज़ों को ऐसे देखता है जैसे वो जाहिर में देखता है। और कहते हैं बैतुल ख्याल में जो बुजुर्ग कामयाब हुए हैं, वो बताते हैं कि सबसे पहले आपके सामने एक खामोश दुनिया आती है, और यह खामोश दुनिया इसी दुनिया का अक्स होती है, मगर इस दुनिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, पाक और साफ होती है। यानी आप जिस तरह जाहिर में देखते हैं, इस तरह आप अपने ख्याल में उसको देख रहे होते हैं। तो ख्याल की ताकत से, इसीलिए इमाम ने जब हमको बैतुल ख्याल दिया, ख्याल के घर में दाखिल हो जाओ। एक बहुत ही खूबसूरत इसके बारे में हमारे उस्ताद ने इजहार किया है कि ख्याल ताइर बरकी है, यानी बिजली का परिंदा है ख्याल। इसको, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये बिजली का परिंदा है। ये आनन फानन मौला के हुजूर जा सकता है, ये आनन फानन नूरानी दीदार करके आ सकता है। ये इंसान की वो ताकत है जो इसके पांच हवास से ऊपर है। तो जिब्रील जो है वो ख्याल का फरिश्ता है। तो जो रूहानियत का तलबगार होता है, ये फरिश्ता आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्याल को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके ख्याल में सफाई लाता है, और जो पर्दा है उस पर्दे को उठाता है। तो इमाम सुल्तान शाह ने भी फरमाया कि तुम्हारा जिस्म वहाँ नहीं जा सकता, मगर तुम्हारा ख्याल वहाँ जा सकता है। ये बैतुल ख्याल के फरामीन में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया। अब कुरान में सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 97, 2 की 97, इसमें हज़रत जिब्राइल का जिक्र है, और हम देखेंगे कि खुदा कितने अजीब तरीके से जिब्राइल को याद करता है। मन काना अदू लिल्लाही व मलाइका, जो खुदा और उसके फरिश्तों का दुश्मन है, व रसूल ही, और उसके पैगंबरों का दुश्मन है, जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन है, तो खुदा भी ऐसे लोगों का दुश्मन है। जो जिब्राइल का दुश्मन है, खुदा भी उसका दुश्मन है। जिब्राइल का दुश्मन कौन हो सकता है? जो जिब्राइल को खुदा का फरिश्ता मानता ही नहीं है, वो उसका दुश्मन होगा? वो तो मानता ही नहीं है। अल्लाह का दुश्मन कौन हो सकता है? जो अल्लाह को अल्लाह मानता हो तो वो उससे दुश्मनी नहीं कर सकता है। अगर वो खुदा को खुदा मानता ही नहीं है तो भी दुश्मनी नहीं कर सकता है, और अगर मानता है तो कैसे दुश्मनी करेगा? वो तो ऑलरेडी मानता है कि खुदा खुदा है, क्योंकि आपको कुरान में ये तसव्वुर मिलेगा खुदा के दुश्मन और खुदा के दोस्त, लेकिन इसका एक मतलब होता है। तो खुदा कुरान में कहता है जो जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन है, अल्लाह भी उसका दुश्मन है। तो हमें मतलब एक बहुत बारीक लॉजिकल नुक्ता समझना होगा, जो जिब्राइल को खुदा का फरिश्ता मानता है, जो मिकाइल को खुदा का फरिश्ता मानता है, तस्लीम करता है, वो उससे क्यों दुश्मनी करेगा? वो तो कह रहा है ना कि भाई ये खुदा का बहुत बड़ा फरिश्ता है। अच्छा, जो खुदा ही को नहीं मानता है, उसके फरिश्तों को भी नहीं मानता है, उसको दुश्मनी करने की क्या ज़रूरत? वो तो मानता ही नहीं है। किसी से दुश्मनी करने के लिए आप उसके वजूद को मानेंगे ना? जैसे अगर कोई कहता है जैद बकर का दुश्मन है, ये दो नाम है, जैद बकर का दुश्मन है, तो जैद ने पहले बकर के एग्जिस्टेंस को माना कि बकर नामी कोई शख्स दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और इसके बाद उसे दुश्मनी की। मतलब ये इंसानों की बात है। अगर आप रूहानी क़ुव्वतों की बात करें, तो अगर मैं जिब्राइल को खुदा का फरिश्ता मानती हूँ, तो मैं उससे नऊज़ुबिल्लाह क्यों दुश्मनी करना चाहूँगी? और अगर मैं जिब्राइल को खुदा का फरिश्ता ही नहीं मानती हूँ, तो उससे दुश्मनी करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जो खुदा को नहीं मानता है, वो खुदा से मोहब्बत या नफ़रत कैसे कर सकता है? उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ किसी काफिर की बात नहीं हो रही है, यहाँ किसी और शख्स की बात नहीं हो रही है, ये मोमिन की बात हो रही है कि अगर तुम अपनी जिब्राइली क़ुव्वत के दुश्मन हो, अगर तुम अपनी मिकाइली क़ुव्वत के दुश्मन हो, तो फिर खुदा भी तुम्हारा दुश्मन है। मतलब ये कि फिर खुदा भी तुमको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकेगा। दुश्मन से हम क्या करते हैं? दूर भागते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उसको मौका नहीं देते हैं, क्योंकि वो दुश्मन है। तो अगर हम जिब्राइल को मौका नहीं देते हैं कि वो हमारे अंदर काम करे, तो फिर एक माना में हम जिब्राइल के दुश्मन हो गए। अगर हमारे पास मौला का दिया हुआ इस्म है, हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो गोया हम उससे दूर भाग रहे हैं, हम उससे एक माना में दुश्मनी कर रहे हैं। उर्दू में महावरतन ऐसा कह सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाते, तो आप कहते हैं कि आप उससे दुश्मनी कर रहे हैं। इसका मतलब ए मोमिन, तेरे अंदर जो कुव्वते जिब्रीलिया है, तेरे अंदर जो कुव्वते मिकाइलिया है, अगर तू उससे फ़ायदा नहीं उठाता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन जिब्राइल का तू खुद है, अपनी कुव्वतों का दुश्मन है, और तू उन कुव्वतों को बरूए कार नहीं लाता है। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि का एक फरमान है कि तुम इबादत नहीं करते हो तो तुम हमारे नूर को कत्ल करते हो। तो कौन सा मोमिन जाके इमाम के नूर को कत्ल करता है? कोई भी मोमिन ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जब उस नूर से हम फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो हम गोया उसका कत्ल कर रहे हैं। हम उस नूर को अपनी ज़ात से रोशन होने नहीं दे रहे हैं। इमाम का नूर इमाम की अपनी हस्ती में इंटैक्ट है, मुकम्मल है, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती है। किसी की ज़रूरत नहीं है कि इमाम के नूर को जाके कत्ल करे। लेकिन इमाम का नूर जो हमसे जाहिर हो सकता था, हमने उसको कत्ल किया। तो इस माना में है जिब्राइल से दुश्मनी करना, मिकाइल से दुश्मनी करना। ये कॉन्टेक्स्ट में बना रही हूँ कि जिब्राइल और मिकाइल से दुश्मनी करने का एक कॉन्टेक्स्ट है। जब आप उनको काम करने नहीं दोगे, तो गोया आप उनसे दुश्मनी कर रहे हो। तो यहाँ खुदा कहता है जिब्रील से दुश्मनी करना ये है कि आप जिब्रील को वो काम करने नहीं दे रहे हो। जिब्रील आपके ख्याल की दुनिया को रोशन करेगा, क्योंकि ये पांच सेंसेस के बाद हमारी एक इससे बढ़कर कुव्वत है, तो ये रूहानियत के करीब है। ये रूह के रास्ते में पांच सेंसेस के बाद आती है, ये रूहानी दुनिया की पहली आंख है। तो तुम उसको काम करने का मौका नहीं दोगे, तो गोया तुमने जिब्राइल से दुश्मनी की। और फिर एक मिसाल दी गई कि सूरज तुलू होता है, सब पे तुलू होता है, लेकिन कोई शख्स पर्दा डाल के बैठ जाए, तो वो सूरज का भी दुश्मन है और अपना भी दुश्मन है। सो चमगादड़ जो बैट होती है, आपको मालूम है, वो सूरज का सामना नहीं करती है, वो अंधेरे में हमेशा होती है। तो वो गोया सूरज की भी दुश्मन है और अपनी भी दुश्मन है कि वो उससे फ़ायदा नहीं उठाती है। तो इस माना में फरिश्ता जो है, उसकी शुआएं, उसकी किरणें सब पर होती हैं, लेकिन अगर कोई उससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहे, तो फिर वो उसके उसका दुश्मन हो गया एक माना में। तो इसके अंदर मैसेज क्या है कि मोमिनीन प्रैक्टिकली जिब्रील से दोस्ती करें। मैसेज यही हो गया ना इस आयत का, कि मोमिनीन प्रैक्टिकली जिब्रील से दोस्ती करें और अपनी इस कुव्वत को जगाएं। इस जिब्रील, इस छोटे जिब्रील का, चूंकि ये हमारी पर्सनल वर्ल्ड का जिब्राइल है, इस छोटे जिब्राइल का ताल्लुक उस बड़े जिब्राइल से है, उसको ताकत उसी से आ रही है, और ये यहाँ जिंदा हो गया तो ये बहुत सारा काम करेगा, और ऐसा ही काम करेगा जैसे उसने बड़े बड़े हस्तियों के लिए दुनिया में किया है। तो इस माना में जिब्रील से दोस्ती जो है वो मोमिन के लिए। फिर इस सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 97 में उसी आयत के नीचे कहता है कि ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और बुशारत है। यानी जो जिब्रील को काम करने देगा उसका दिल गाइडेंस से पुरनूर होगा और उसके लिए खुशखबरी होगी। गिनानों में पीरों ने कितनी मरतबा कहा है, मोमिनो खुशखबरी है तुम्हारे लिए, मुबारकबादी है तुम्हारे लिए, आओ तुम गत में जमा हो जाओ, मेला करो। तो मुबारकबादी मोमिनीन को बार बार दी जाती है क्योंकि अगर वो जिब्रील को काम करने देगा तो खुदा की तरफ से उसके लिए बुशारत है कि वो कामयाब हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं मीकाईल पर। जिब्रील जो है वो मैंने कहा जैसे वो ख्याल का फरिश्ता है और नूर ए ख्याल इसका नाम है, इसी तरह मीकाईल जो है वो खोलने का फरिश्ता है। मीकाईल का एक नाम हमारे इस्माइली लिटरेचर में फतह है, फतह यानी खोलना। तो मीकाईल का काम है खोलना, क्या खोलना, इल्म का दरवाज़ा खोलना, तावील का दरवाज़ा खोलना। और इसके लिए सूरह नंबर 34 की आयत नंबर 26 है, कुल यजमउ बैनना रब्बुना, कहो कि हमारा रब हमको जमा करेगा, सुम्मा यफ्तहू बैनना, इसके बाद खोल देगा हमारे दरमियान। ठीक है, यफ्तहू का लफ्ज़ जो है हक के साथ खोल देगा, हक को समझने का दरवाज़ा खोल देगा। हमारे पीरों और दाइयों ने इसी आयत को हज़रत मीकाईल के लिए इसको इस्तेमाल किया है। तो कहते हैं कि हज़रत मीकाईल जो है वो खोलने का फरिश्ता है, इसको फ़ारसी में कुशूदन कहते हैं, दरवाज़ा कुशादा हो गया उर्दू में कहते हैं, यानी खुल गया है। तो ये कुशूदन का फरिश्ता है और खुदा कहता है कि पहले मेरा रब आपको जमा करेगा और फिर हमारे दरमियान सच्चाई से खोलेगा, क्योंकि वो खोलने वाला है। खुदा का एक नाम है फत्ताह, फेते उस पर तशदीद के साथ अलिफ, जिस तरह सत्तार गफ्फार, इसी तरह खुदा का एक नाम है फत्ताह, दरवाजे को खोलने वाला। तो इस माना में खुदा जो है वो दरवाज़ा खोलने वाला है। तो तुम दीन मोहम्मदी में दाखिल हो जाओगे, इसके बाद वो तुम्हारे लिए तावील का दरवाज़ा खोलेगा। अगर मोहम्मद के बाद तुम अली को मानोगे तो अली तावील का मालिक है। कहते हैं एक मरतबा रसूल अकरम सल्लम जो एक सफ़र पे जा रहे थे और रास्ते में रसूल सल्लम का जूता जो है वो टूट गया। तो जब किसी ऐसे सफ़र पे जाते थे और कोई ऐसी खिदमत होती थी तो सब सहाबी लपकते थे कि वो रसूल की खिदमत करें। जब रसूल का जूता टूटा, मौला अली ने लपक के उठाया और मौला अली उस जूते को ठीक करने लगे। तो रसूल सल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद तुम में से एक शख्स होगा जो तावील के लिए इस तरह से जंग लड़ेगा जिस तरह के मैंने तंजील के लिए जंग की है। तंजील जाहिर को कहते हैं और तावील बातिन को कहते हैं। तो रसूल सल्लम ने फरमाया मेरे बाद एक शख्स होगा जो बातिन पर इस तरह से जंग लड़ेगा जिस तरह मैंने जाहिर पर जंग लड़ी है, जिस तरह मैंने कुरान का जाहिर इम्प्लीमेंट कराने पर जंग लड़ी है, इसी तरह मेरे बाद एक होगा जो कुरान के बातिन पर जंग लड़ेगा, तावील पर जंग लड़ेगा। तो कहते हैं कि लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन है, और कुछ एक दो नाम भी लिए। तो रसूल ने कुछ जवाब नहीं दिया, रसूल ने इशारा किया वो जो जूता बना रहा है, क्योंकि मौला अली ने रसूल का जूता उठाया था और एक पत्थर पे जाके रसूल के जूते की मरम्मत कर रहे थे। तो मौला अली ने फरमाया वो जो जूता ठीक कर रहा है, अरबी में इसको कहते हैं खासिफुन नाल, जूता ठीक करने वाला। तो इस हदीस का नाम ही पड़ गया है हदीस ए खासिफुन नाल, जूता ठीक करने वाले की हदीस। तो ये मौला अली की तरफ से इशारा था। इसका मतलब तंजील का मालिक रसूल था, तावील का मालिक अली है। जो मोमिन अपनी कुव्वतों को आगे बढ़ाएगा तो उसकी एक कुव्वत कुव्वते मीकाईलिया है। आप जैसे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि तुम गिनानों को पढ़ो और अपनी अक़ल के मुताबिक कोशिश करो उसको समझने की। देखिए आप जब अपनी अक़ल के मुताबिक और उसमें मौला की गाइडेंस शामिल हो या किसी बुज़ुर्ग का हवाला शामिल हो और आप कोशिश करेंगे तो एक माना में आप उसकी तावील कर रहे हैं। अगर आपकी मीकाईली कुव्वत ज़िंदा है तो वो आपके जहन में अच्छे से अच्छी तावील लाएगी, अच्छे से अच्छा ख्याल लाएगी। अगर आप चाहते हैं कि दीन की चीज़ों को समझें तो आप अपने मीकाईल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, वो आपके लिए दरवाज़े खोलेगा, तावील के दरवाज़े खोलेगा और आपको समझने में मदद देगा। तो मीकाईल जो है जाहिर में आपको पता है मीकाईल के लिए कहा जाता है कि मीकाईल रोज़ी का फरिश्ता है, वो रोज़ी लाता है। तो हमें सिर्फ ज़ाहिरी रोज़ी नहीं चाहिए, हमें बातिनी रोज़ी भी चाहिए। तो कुरान में सूरह माईदा है, सूरह नंबर 5, उसकी आयत 114 है। उसमें हज़रत ईसा की एक दुआ है। हज़रत ईसा खुदा से दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान को नाजिल फरमा ताकि हम उसमें से अच्छी गिज़ाएँ खाएं, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाए। हज़रत ईसा दुआ फरमाते हैं हमारे लिए आसमान से एक टेबल क्लॉथ, एक दस्तरखान नाजिल फरमा ताकि हमारे लिए खुशी का दिन हो, ईद का दिन हो। और तू सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला तू है। तो जब हम मौला से रिस्क मांगते हैं तो क्या ये सिर्फ ज़ाहिरी रिस्क है या इसके साथ साथ हम बातिन का रिस्क भी मांगते हैं? जब नौरोज़ में हमें जमात खाने में रोज़ी मिलती है तो हमें हमें क्या सोचना चाहिए कि इसमें सिर्फ दुनिया के रिस्क को बढ़ाने की दुआ है या इसमें रूह और अक़ल के रिस्क के लिए भी दुआ है? रोज़ी तो उसको भी खुदा ने बहुत ज़्यादा दी है जिसने इमाम से मांगा ही नहीं है, जो इमाम को जानता भी नहीं है, उसने इमाम से सवाल भी नहीं किया है, न इमाम ने उसको दुआ दी है। दुनिया की रोज़ी तो उसके पास भी बहुत है। तो फिर हमको जब रोज़ी दी जाती है तो किस दुआ के साथ दी जाती है? हमारा जिस्म भी है, हमारी रूह भी है, हमारी अक़ल भी है। तो रूह का रिस्क, अक़ल का रिस्क। रूह का रिस्क जो है वो तस्बीह है, इबादत है, गिरियाउजारी है, एक जमात खाने के अंदर फ़र्ज़ इबादत है। फ़र्ज़ के अलावा उठते बैठते भाई राह चलनते नाम साहिब जी को लीजिए जी, ये तालीम दी गई है ना कि तुम उठते बैठते घर में काम करते हुए मौला का नाम याद करो। तो रूहानी रिस्क तस्बीह है, इबादत है, गिरियाउजारी है, तो ये रूहानी रिस्क है। और अकली रिस्क सोचने की एक्सरसाइज करना, फरमान पर सोचना, गिनान पर सोचना, कुरान पर सोचना, ये अकल की रोज़ी है। तो जब हम रोज़ी की बात करते हैं तो रोज़ी सिर्फ जिस्म की रोज़ी तक महदूद नहीं है, क्योंकि जिस्म की रोज़ी तो खुदा ने उनको भी दी है जिन्होंने सवाल भी नहीं किया है, जिनको दुआ भी नहीं है। तो फिर इसी तरह सुबह की दुआ में हम कहते हैं या वहाब, ए बहुत ज़्यादा देने वाले, ए बहुत ज़्यादा देने वाले, तो उधर भी सिर्फ जिस्म की रोज़ी मुराद नहीं है, रूह की रोज़ी भी मुराद है, अक़ल की रोज़ी भी मुराद है। हाँ, जिस्म की रोज़ी मांगने के लिए भी हम ये दुआ कर सकते हैं, मौला से दुआ करने की इजाज़त है, दीन और दुनिया की मुश्किलात के लिए मौला से दुआ होती है, दुआ हम कर सकते हैं। तो मीकाईली ताकत आपके अंदर जो रोज़ी लाएगी वो रूह की रोज़ी, अक़ल की रोज़ी, आपको इबादत बंदगी पे उभारेगी, गिरियाउजारी पे उभारेगी, और आपकी अक़ल को सोचने की ताकत देगी। मगर ये फरिश्ता कब हरकत में आएगा? जब आप इबादत से इसको जगाएंगे। ये सोई हुई ताकतें हैं, इसको जगाने की जिम्मेदारी आपकी है, इसको काम इससे काम लेने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जब हम इस फरिश्ते को जगाएंगे तो ये फरिश्ता हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए रोज़ी लाएगा, और ये रोज़ी रूह और अक़ल की रोज़ी है, जो ज़्यादा ज़रूरी रोज़ी है। ओके, इसके बाद इसराफील फरिश्ता। इसराफील फरिश्ते का एक नाम कुरान में जद है। जद का मतलब है शान, खुदा की शान। इस फरिश्ते को खुदा की शान भी कहा गया है। तो जद का जिक्र जो है वो कुरान में 72:3 में है। हमारे परवरदिगार का वो फरिश्ता बहुत ही ऊंचे मकाम का है जिसका नाम जद है। तो इसराफील का एक नाम जद है। इसराफील किस चीज़ का फरिश्ता है? सूर फूंकेगा। सूर मतलब सूर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है नाकूस, शहनाई। कहते पुराने ज़माने में गाय या बैल के सींग से एक नाकूस बनाते थे, एक शहनाई जैसा बनाते थे और उसमें फूंकते थे। इसका मतलब इसराफील मौसीकी का फरिश्ता है, म्यूज़िक का फरिश्ता है ना, क्योंकि वो कोई म्यूज़िक बजाएगा। अब जाहिर में कहते हैं बहुत खतरनाक खौफनाक म्यूज़िक होगी और इसके बाद सब इंसान बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कयामत का तसव्वुर रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। तो ये कोई खौफनाक और दहला देने वाली म्यूज़िक नहीं होगी, बल्कि ये एक बहुत ही सुरीली और अच्छी म्यूज़िक होगी। और इसको सुनने के बाद एक मोमिन के अंदर इनकलाब आता है। मौसीकी का फरिश्ता क्या करता है? अभी अलीज़ा गिनान पढ़ रही थी, हम सबको कितना अच्छा लग रहा था, हमारी रूह झूम रही थी। हम जमात खाने में गिनान सुनते हैं, अगर हमारा मूड अच्छा हो और हम ये गिनान सुने तो कितना इश्क, कितनी मोहब्बत पैदा होती है। इस मौसीकी में हम खो जाते हैं, ये इसराफीली क़ुव्वत है। आप तस्बीह को रिदम से पढ़ें, आप गिनान को रिदम से पढ़ें, आप कुरान को रिदम से पढ़ें, ये इसराफीली फरिश्ता है जो आपके अंदर रिदम के ज़रिए दीन के जज्बात को उभारता है। और कहते हैं जिब्राइल और मिकाइल से इसका दर्जा बड़ा है, जिब्राइल और मिकाइल से इसका दर्जा बड़ा है, क्योंकि ये इश्क के हकीकी का फरिश्ता है। ये आपके अंदर भरपूर इश्क पैदा करता है और ये आपके अंदर का इसराफील है। तो आपने शायद सुना होगा कि इस्माइली ट्रेडिशन, जो सेंट्रल एशिया की ट्रेडिशन है, उसके वहाँ के इस्माइली एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इबादत करते हैं। वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और उसके साथ इबादत करते हैं, और ये पीर नासिर खुसरो की रस्म है और ये अब तक सेंट्रल एशिया में जारी और सारी है। इसी तरह इमाम बेगम के लिए शायद मशहूर है ना कि वो सितार के साथ गिनान पढ़ती थी। और इसी तरह जो सूफ़ी हैं, आप देखें वो रक्स करते हैं, म्यूज़िक जो है उस पर जिक्र करते हैं। तो गिनानों खुद गिनान कहते हैं कितनी है, 36 ज़बानें और 42 सुर, यही तारीख है ना मेरे ख्याल में। तो आप देखें सुर इस्तेमाल किए हैं, पीरों ने राग इस्तेमाल किए हैं क्योंकि म्यूज़िक की अहमियत थी और उस म्यूज़िक से एक इनकलाब आता है। तो म्यूज़िक का इस्तेमाल ऐन दीन के अंदर है। तो ये हमारे इसराफीली क़ुव्वत को जगाने के लिए है, इससे हमारा छोटा इसराफील बेदार होता है और बड़े इसराफील से राबता करता है। और बड़ा इसराफील जब मदद करता है तो जिस तरह सूर फूंकने से क़यामत आती है, क़यामत यानी तब्दीली आती है, इसी तरह इस फरिश्ते के एक्टिव होने से हमारे अंदर इश्क की क़यामत आती है। लोग क़यामत को कोई बहुत भयानक तसव्वुर समझते हैं, लेकिन मोमिन के लिए क़यामत जो है वो रूहानी इनकलाब है। हम
अभी
रूहानी तब्दीली, रूहानी तब्दीली को क़यामत कहते हैं क्योंकि क़याम का मतलब ही है कोई बैठा है तो खड़ा हो गया, तब्दील हो जाना।
वीकनेस
अवेयरनेस, अवेकनेस के आप जाग गए, आप खामोश थे, आप जाग गए। तो अंदर का इसराफील जब सूर फूंकता है तो आप अंदर से जाग जाते हैं। तो इस माना में ये फरिश्ता आपको जगाएगा, आपके अंदर इश्क पैदा करेगा और इसके बाद आप मौजजात से, आपको कुछ मौजजे हो सकते हैं। तो अगर हमें गिनान पढ़ने का शौक़ है, सुनने का शौक़ है, गिनान से हम झूमते हैं, इसका मतलब हमारा इसराफील ज़िंदा है और आपको उसको और मजबूत करना है। उसके लिए घर में तस्बीहात को रिदम से पढ़ें, रिदम से सुनें। लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता है, बोलने से ज़्यादा इनकलाब आता है अगर हम साथ साथ बोलें। जिक्र जल्दी कहते हैं इसको कि आप ज़ोर से जिक्र करें, तो ऐसे जिक्र से हमारा इसराफील जो है वो ज़िंदा होता है। इसके बाद नंबर आता है किसका,
इज़राइल
हज़रत इसराइल का। हम सबको बड़ा डर लगता है हज़रत
बिल्कुल
इसराफील के बाद। अब इसराफील तक तो दोस्ती हो गई ना, बहुत अच्छे फरिश्ते हैं, हमारे अंदर काम करते हैं, हमको मदद करते हैं और ये हमारी अपनी क़ुव्वतें हैं। जब खुदा ने तमाम चीज़ों को मुसख़्खर करके रखा है तो ये फरिश्ते भी अंदर हैं और ये काम करते हैं। हज़रत इसराइल जो है वो मौत का फरिश्ता है। 32 की 11 में देखें इस फरिश्ते की एक तारीफ़ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे कहो, मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, तुमको पूरा पूरा अपने कब्ज़े में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की तरफ पलटा ले जाओगे।
कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, तुम पर मौत का फरिश्ता मुकर्रर किया गया है। मौत का फरिश्ता अगर हम पे मुकर्रर किया गया है तो वो हमारे साथ ही होगा ना, हम पर मुकर्रर किया गया है, हम पर मुअक्कल बिठाया गया है, एक वकील की तरह उसको हमारे अंदर बिठाया गया है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपके लिए गार्डियन मुकर्रर किया गया है तो गार्डियन आपके साथ साथ होगा ना, आपकी ज़िंदगी के हर काम में आपके साथ होगा। अगर हज़रत इज़राइल हम पर मुकर्रर किए गए हैं तो वो हमारे साथ साथ हैं और ये भी एक फरिश्ता है, एक क़ुव्वत है। अब ये हज़रत इज़राइल क्या करते हैं, हज़रत इज़राइल जो हैं वो रूह कब्ज़ करते हैं, तो मौत मौत से गुजारते हैं एक मोमिन को। लेकिन एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मौत सिर्फ़ एक मरतबा होती है ज़िंदगी के आखिर में, या आदमी ज़िंदगी में मौत और ज़िंदगी के दरमियान से गुज़रता रहता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि हम रात को सो जाते हैं, रात को सोना नींद को रसूल अकरम सल्लम ने मौत की छोटी बहन कहा है। इसका मतलब हर रोज़ रात को हम एक मौत से गुज़रते हैं, हम सोते हैं। ये काम कौन करता है, हज़रत इज़राइल करता है। इज़राइल उस दौरान हमारी रूह को कब्ज़ कर लेता है और सुबह उठने से पहले हज़रत इसराफील हमको जगाता है। इसका सबूत कुरान में कहाँ है, 39 की 42 अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि नींद में हज़रत इज़राइल काम करता है।
वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज़ करता है, और जो अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज़ करता है। फिर जिस पर वो मौत का फ़ैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है, और दूसरों की रूहें एक वक्ते मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है।
बहुत अजीब आयत है कि इज़राइल जो है वो तुम्हारी रूह को कब्ज़ करता है मौत के वक्त में, लेकिन जिन पर अभी मौत नहीं आई है उनकी रूह को नींद में कब्ज़ करता है। नींद में कब्ज़ करने के बाद अगर अभी मौत का वक्त नहीं आया है तो रूह को वापस भेज देता है, लेकिन नींद में अगर किसी की मौत का हुक्म आ गया है तो उसको रोक लेता है। तो आप देखें हर रोज़ रात को नींद में हमारी रूह कब्ज़ होती है, हज़रत इज़राइल काम कर रहा है ना। तो नींद चाहिए तो हज़रत इज़राइल से दोस्ती करनी पड़ेगी। जिनको नींद नहीं आती है, मतलब एक तो मोमिन होते हैं जो बहुत इबादत करते हैं उनकी नींद कम हो जाती है और उनका काम करने को दिल चाहता है, वो अलग बात है। लेकिन जिनको नींद बीमारी की सूरत में नहीं आती है, कहते हैं उनसे उनका हज़रत इज़राइल रूठा हुआ होता है, उनकी कोई ना कोई एक, देखें एक काफिर के लिए क्राइटेरिया अलग होता है, काफिर का लफ्ज़ जैसा भी है, लेकिन ये कि हम मोमिनीन हैं, हम मौला को मानते हैं, हमारे लिए एक अलग कानून है, वो खाएं पिएं जितना भी मौज करें उनको मौला और नवाजेगा। यहाँ तक कि हम, हमारा काम बोलना है जमात में, हम एक चीज़ नोट करते हैं, अगर बाहर का आदमी खाए पिए मस्ती करे इसके बाद भी वो बहुत अच्छी खिताबत कर सकता है, लोगों को अपनी ओरेटरी से, फॉल्स ओरेटरी से गुमराह भी कर सकता है। मोमिन अगर ज़्यादा खाए पिए और बेखबर हो जाए उसके बोलने में फ़र्क आता है, क्योंकि उसके लिए जब्बारियत का कानून है, यानी मौला उसको एक रास्ते पे रखना चाहता है, उस पे जबर करता है, और वो चाहता है कि वो इस रास्ते से गुजर कर पाक और पाकीज़ा हो जाए, तो इसके लिए कानून अलग है। अब मोमिनीन के लिए अगर उसकी नींद में खलल है और इबादत के बग़ैर खलल है तो उसको सोचना पड़ेगा, हज़रत इज़राइल से दोस्ती करनी पड़ेगी कि वो रात को आपकी रूह को कब्ज़ करे। इसका मतलब इज़राइल तो साथ साथ रहता है, रोज़ रूह कब्ज़ करता है, फिर सुबह इसराफ़ील वापस ले आता है, तो इस इज़राइल से डरना चाहिए या इस इज़राइल से दोस्ती करनी चाहिए?
दोस्ती करनी
दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये इज़राइल आपको सुलाता है, और ये इज़राइल अगर आपको ना सुलाए तो आप कितने परेशान हो जाएंगे,
कैसे करनी
आप कैसे काम करेंगे, कितना थक जाएंगे। अच्छा, सोने के दौरान क्या होता है? साइंस कहती है कि हमारे सेल्स दोबारा रिपेयर हो जाते हैं, या जो जो सेल्स टूट गए होते हैं, खस्ता हो गए होते हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं और हम फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन बातिनन क्या होता है, थकी हुई रूह निकल जाती है, ताज़ा फ्रेश रूह आती है, चूँकि इज़राइल कब्ज़ करता है रूह को, जो थकी हुई रूह है उसको कब्ज़ करता है, और जो फ्रेश रूह है उसको फिर अगली सुबह हज़रत इसराफ़ील अंदर ले आता है। तो इसका मतलब डेली हम एक अमल से गुज़रते हैं जो इज़राइल और इसराफ़ील का मुश्तरक अमल है। अच्छा, तो अभी जैसे दूसरे फरिश्तों के लिए हमने कहा आलम उलवी में, आलम बाला में वो एक इज़राइल है, लेकिन सूरज की तरह है उसका अक्स, हमारा दिल शीशा है तो हम सब के दिलों में उस इज़राइल का अक्स है, हमारे पास भी एक छोटा छोटा इज़राइल है या पोटेंशियल इज़राइल है जिसको एक्चुअल बनाना है। तो अब इज़राइल जो है वो सिर्फ मौत के वक्त जान लेने के लिए काम नहीं करता है, बल्कि सोने उठने बैठने के लिए काम करता है। अब आप देखें, जानवर की जान लेनी होती है, क्या इसम पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, कहते हैं ये हज़रत इज़राइल का इसम है, तो उसकी जान लेते वक्त अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं ताकि हज़रत इसराइल की कुव्वत काम करे और जानवर की जान आसानी से निकल जाए। मुसलमान इसी तरह करते हैं ना, दुश्मनों के लड़ने के लिए जाते हैं तो क्या तस्बीह पढ़ते हैं मुसलमान? अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि सामने वाले की रूह कब्ज़ हो और उनको हमला करना आसान हो। जो मुसलमान रसूल की मोहब्बत के साथ खुदा के अहकाम पर अमल करते हुए मैदान जंग में गए हैं वो हमेशा कामयाब आए हैं। हमारे लिए जिहाद वो है जो रसूल और इमाम के हुक्म के तहत हो, उसके बाहर हम किसी और जिहाद पर यकीन नहीं रखते हैं। और जिहाद किसी ज़माने में ज़ाहिरी था, अब इल्मी है, खिदमत का जिहाद है, अब अलग किस्म का जिहाद है, लेकिन जब मुसलमान जिहाद में जाते थे रसूल और इमाम के फरमान के मुताबिक, तब वो वहाँ पर एक तस्बीह पढ़ते थे अल्लाहू अकबर। इसका मकसद क्या था? हज़रत इज़राइल सामने वाले लोगों की रूह को कब्ज़ करें और मुसलमान उन पर हमला करें, मतलब ये एक रूहानी टेक्निक है। कहते हैं ना, जंग में हर चीज़ जायज़ है, तो जंग में आप कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हो जिससे आप फतेयाब हो सकते हो, तो वो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, रसूल और इमाम के हुक्म के तहत जो जिहाद किया जाता है वो असल जिहाद है। इसके अलावा दुनिया में सियासत की खातिर या कुछ और मकासद की खातिर जो जिहाद किया जाता है उसको हम जिहाद नहीं कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि जब बीबी फातिमा तो जहरा काम करके बहुत थक जाती थी और रसूल के पास गई कि या रसूल अल्लाह, खुद तो नहीं बोल सकी, मौला अली ने उनकी तरफ से कहा कि फातिमा बहुत थक जाती है, चक्की पीसती है, काम करती है, तो जंग में माल गनीमत में कुछ कनीज़ें आई थी, कुछ स्लेव खवातीन आई थी, तो मौला अली ने रिक्वेस्ट की कि फातिमा के लिए घर में काम करने के लिए एक नौकरानी दे दें। रसूल सल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ें, ठीक है, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ें, और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ें, थकन की रूह कब्ज़ हो जाएगी। अल्लाहु अकबर पढ़ने से थकन की रूह कब्ज़ हो जाएगी और आप फ्रेश हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर कोई अंदर बीमारी भी है तो उसकी रूह भी कब्ज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा गिरियाउजारी के साथ इस तस्बीह को अकेले बहुत देर तक नहीं पढ़ना है, इसलिए कि ये रूह कब्ज़ कर सकती है, यू नो। तो इस तस्बीह को आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें, और इसके साथ नॉलेज डिस्कशंस ये चीज़ें जारी हों। जब इल्म के बगैर इबादत होती है तो वो समझ में नहीं आता, और उसमें रूहानियत आपको अपनी लपेट में ले सकती है। तो ये तस्बीह गिरिया उजारी के साथ करनी है, जिस तरह बीवी फातिमा तुज़हरा की तस्बीह है इस तरह से करनी है। सब तस्बीहात को मिला के करना है। सिर्फ इस तस्बीह को देर तक अलग थलग बहुत गिरिया उजारी से करने से शायद ये तजर्बा होगा, और ये तजर्बा उस वक्त होना चाहिए जान निकालने का जब मोमिन इसके लिए तैयार हो। अगर उससे कबल अज़ वक्त ऐसा तजर्बा हो गया तो रूह शायद वापस ना आ सके। यू नो ये एक इसमें रिस्क का एलिमेंट भी होता है। तो वो जब मूतू कबला अन तमूतू का मकाम आएगा, वहाँ पे मोमिन इस काबिल होगा कि इज़राइल अल्लाह अकबर पढ़ेगा, जान निकालेगा, दोबारा डालेगा, जान निकालेगा दोबारा, क्योंकि इमाम सुल्तान शाह ने फरमाया है कि तुम इबादत में अपनी रूह को बाहर निकाल के देखो। और मिशनरी कारा रूरा अपनी रूह को निकालते थे तब भी उनका ऑपरेशन होता था। एक दफ़ा क्लोरोफॉर्म नहीं था, उन्होंने कहा कि आप मेरा ऑपरेशन करो, मैं अपनी रूह को बाहर निकालता हूँ। उनके पास इतनी ताकत थी। तो मोमिनीन के पास ये ताकत आ सकती है। और ये जिनको मौला किसी बहुत बड़े काम के लिए मुकरर कर दे और वो सही मानों में उसी तरह इबादत बंदगी करें और इन चारों फरिश्तों से फ़ायदा उठाएं, तो उनके लिए ऐसा मकाम आ सकता है। तो मूतू कबला अन तमूतू का एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये एकदम से नहीं आता, इसके लिए बहुत रियाजत चाहिए, ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल चाहिए, रूहानी तौर पर बहुत इल्म चाहिए, इसके बाद ये मकाम आता है। तो उस वक्त ये ऑटोमेटिक होता है, आप नहीं भी चाहेंगे तो ये तजर्बा हो रहा होगा, और फिर आपको ये कुव्वत होगी कि आप अपने जिस्म से खुद अपनी चॉइस पर ये काम कर सकें। लेकिन इससे पहले नहीं, इससे पहले इसके छोटे छोटे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन थकन की रूह को निकालने के लिए 33 मरतबा रसूल ने बीबी फातिमा को फरमाया ना, 33 मरतबा रोज़ पढ़ो। आप रोज़ पढ़ सकते हैं अल्लाह अकबर। आपकी बीमारी, आपकी थकन, आपकी मायूसी, चूँकि जिस भी चीज़ को की रूह कब्ज़ करनी है, आपके अंदर वसवसे हैं, आप चाहते हैं कि कोई वसवसे की रूह कब्ज़ करे, ये काम हज़रत इसराइल करेगा। क्योंकि जिस भी चीज़ को हलाक करना है ये काम हज़रत इसराइल का है, हलाक करने का काम, उसकी रूह निकालने का काम हज़रत इसराइल का है। तो इस माना में हज़रत इसराइल मोमिनीन का दोस्त है, वो मोमिनीन के साथ है, वो हर वक्त उसके पास है। ये चार फरिश्ते जो शायद लोगों के लिए आसमान पे हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिन तक पहुंच नहीं सकते हैं, जिन्होंने एक काम या तो कर लिया है जिब्राइल की तरह और अब फारिग बैठे हैं, या दूसरा काम इसराफील की तरह करना है और फारिग बैठे हैं, हमारे लिए ये फरिश्ते हमारी चार कुव्वतें हैं। कुव्वत जिब्राइलिया, कुव्वत मीकाईलिया, कुव्वत इसराफीलिया, कुव्वत इसराइलिया। एक मोमिन अपनी कुव्वतों से काम लेता है, इन पोटेंशियल फरिश्तों को एक्चुअलाइज करता है। ये बीज की सूरत में यहाँ दिए गए हैं। जिस तरह इसमें आज़म हमको मिलता है तो इसमें आज़म भी एक बीज की सूरत में होता है ना, उसको अपनी ज़ात में उगाना होता है। और जब इसमें आज़म ज़िंदा होता है तो वो इमाम की सूरत में ज़िंदा हो जाता है। हम अपनी हस्ती में इमाम को देखते हैं, उसका नूरानी दीदार करते हैं। इसमें आज़म एक बीज की तरह दिया गया था, उसका दरख्त उगाना है। तो इसी के साथ ही जो हम रूहानी तरक्की या इबादत और मारिफत की बात करते हैं, तो इबादत और मारिफत का इन चार फरिश्तों से लिंक है। हमारी इबादत पर ये फरिश्ता जागेगा, इससे पहले ये फरिश्ता सोया हुआ है, क्योंकि फरिश्ते को भी कुछ खाना चाहिए, फरिश्ते को कुछ एनर्जी चाहिए। आप जब इबादत का कुछ फ्यूल पैदा करोगे तो ये फरिश्ता ज़िंदा होगा, और जब ये फरिश्ते ज़िंदा होंगे तो आपके अंदर काम करते हैं। हम पैगंबरों के किस्से जब पढ़ते हैं तो हमको यूँ लगता है कि सिर्फ हज़रत जिब्राइल काम कर रहे हैं, मगर किसी भी पैगंबर के लिए या किसी भी आरिफ के लिए, यानी मौला ने जिन मोमिनीन को ये मर्तबा दिया माजी में, जो बुज़ुर्ग हुए या जो आरिफ हुआ, उसके अंदर भी ये चारों फरिश्ते मिल के काम करते हैं। जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इसराइल मिल के काम करते हैं, और रूहानी तरक्की में ये तमाम फरिश्ते जब साथ काम करते हैं तो फिर वो क़यामत बरपा होती है। इश्क हकीकी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहते हैं इश्क की वजह से बिलाखिर हज़रत इज़राइल रूहानी अमल करने के लिए आपको तैयार कर लेता है, और फिर एक क़यामत बरपा होती है जो मूतू कबल अन तमूतू का वाक़िया है। और उसके बाद चूंकि आप मौत से गुजर गए, अब आपके लिए बहिश्त है, दुनिया ही में बहिश्त है। आप जिधर भी आंख उठा के देखेंगे आपको उसमें इल्म, गहराई, मतलब समझ में आएगा, आप एक बहिश्त में हैं। सैयदना मोहिद्दीन शिराजी पीर नासिर खुसरो के टीचर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, इमाम की मोहब्बत बिहिश्त है, इमाम का इल्म बिहिश्त है, इमाम से दूरी दोजख है, इमाम के इल्म से गफलत दोजख है। तो हमारे लिए दुनिया में भी पोटेंशियल बिहिश्त है, इमाम का इल्म बिहिश्त है, इमाम की कुर्बत मिले तो बहिश्त है, लेकिन असली और आखिरी मानों में जब कोई मोमिन मूतु कबल अन तमूतु से गुज़र जाता है, फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बहिश्त है। और बहिश्त कोई ऐसा मकान नहीं है जिसमें हमको दाखिल होना है और वहाँ पे हूरें होंगी और अच्छे फल होंगे, ये बड़ा महदूद नज़रिया है। असल बहिश्त वो है जो इमाम के इल्म की बहिश्त है, उसकी हिकमतों की बहिश्त है, उसमें बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं और उन राजों से पर्दा उठाना है, वो बहिश्त है। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बहिश्त भी एक कैद खाना है। अगर कोई सिर्फ बहिश्त की उम्मीद रखता है कि कोई मकान होगा उसमें मैं दाखिल हो जाऊंगा, तो वो भी एक कैद खाना है। इस बहिश्त से भी आगे जाने की फ़िक्र करनी है, और दूसरे मानों में खुद बहिश्त बन जाना है कि आपकी हस्ती अगर इल्म व हिकमत से मामूर हो गई, जिक्र से रोशन हो गई है, तो आप अपनी हस्ती में खुद एक बहिश्त हैं। तो लोगों के लिए बहिश्त बहुत दूर है, आसमान पर है। इस्माइलियों के लिए बहिश्त जमात खाना है। बहिश्त उसके अपने घर में अगर उसने जिक्र इबादत का माहौल रखा है तो उसका घर बहिश्त है। अगर उसके ऐसे दोस्त हैं जो मौला का नाम लेके उसके साथ बैठते हैं तो उसकी दोस्ती बहिश्त है। हमारे लिए बहिश्त बहुत करीब लाई गई है। कुरान में एक आयत है, वह उजलिफतुल जन्ना, और क़यामत के दिन बहिश्त को नज़दीक लाया जाएगा। यानी बहिश्त आपसे बहुत, बहिश्त खुद चल के आएगी, आपको चल के नहीं जाना है, बहिश्त चल के आएगी। यानी इमाम का नूर जब आपके अंदर रोशन हो रहा होगा, वही बहिश्त होगा, तो वो नूर खुद आपके अंदर आकर बोलेगा, रोशन हो जाएगा। तो इस माना में जो इबादत और मारिफत, यही मारिफत है, लेकिन मारिफत बहुत मुश्किल चीज़ है। मारिफत तक पहुँचना एक बहुत लंबा अमल है, और इसके लिए मोमिन को अगर उस तक पहुँचना है तो उसका स्टेप, कुरान में तीन आयात हैं जहाँ खुदा कहता है भागो, दौड़ो, तेज़ तेज़ चलो, है दूर बहुत इल्मी सफ़र, तेज़ चला चल, पुर अमन है ये राह न डर, तेज़ चला चल। कहा गया है कि इल्म का सफ़र बहुत दूर है, इसको करने के लिए तुमको स्टेप वाइज एक प्रोग्राम बनाना होगा अपनी ज़िंदगी में इल्म का, उसको हासिल करने का, इबादत का। और जब उस सफ़र पे तुम आगे से आगे जाओगे, अगर कुल्ली तौर पर मारिफत हासिल नहीं हुई, कुल्ली तौर पर हम फना नहीं हुए, तब भी थोड़ा थोड़ा फना होकर हमें वो खुशी, वो मोहब्बत, वो एतमाद, वो इल्म मिलता रहेगा। और मोमिन के लिए ज़िंदगी में ये इल्मुल यकीन की सूरत में एक मारिफत होगी। एक मारिफत होती है इल्म की सूरत में, एक मारिफत होती है आप आँख से देखें, और एक मारिफत होती है कि आप खुद तजर्बा करें। तो ये इल्म की सूरत में एक मारिफत और एक बहिश्त होगी। कहते हैं जिब्रील आपका इलाज करता है इल्म से, ठीक है, और ख्याल से। मीकाईल आपका इलाज करता है हिकमत से, विजडम, हाँ, अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग। या इसराफील आपका इलाज करता है गिरिया उजारी और सिजदे से, बहुत आजिज़ी से और इश्क से। और आखिरी जो आपका इलाज है वो इज़राइल करता है, अगर आप मूतु कबल अंतम तो आपके अंदर से सारी बातनी बीमारियां निकल जाती हैं, फिर आपको कुल्ली सेहत मिलती है। तो अगर सेहत के हवाले से इंटरप्रेट करें तो जिब्राइल इल्म से और ख्याल से आपकी आपका इलाज करता है, मीकाईल हिकमत से आपका इलाज करता है, इसराफील इश्क से इलाज करता है, और इज़राइल आखिरी तजर्बे से आपका इलाज करता है।